नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवाकर जीएसटी सुधार समिति के लक्ष्यों की रूपरेखा कल प्रस्तुत की। कोलकाता के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सुधारों का उद्देश्य देश की कर और राजस्व प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से लागू जीएसटी ढांचे के पुनर्गठन से पहले राज्यों के सुझावों पर गहन चर्चा की गई थी। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि केवल 8 महीनों में ये सुधार लागू किए गए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सोमवार से लागू होने वाली जीएसटी दरों में संशोधन के मद्देनजर संशोधित परामर्श जारी किए हैं। निर्माता, पैकर्स और आयातक 22 सितंबर से पहले निर्मित बिना बिके वस्तुओं के पैकेजों पर स्वेच्छा से नए मूल्य स्टिकर लगा सकते हैं, लेकिन पैकेज पर छपे मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी अस्पष्ट न लगे। मंत्रालय ने कहा है कि नियमों के तहत पुनः स्टिकर लगाना अनिवार्य नहीं है और संशोधित मूल्य घोषित करना कंपनियों के लिए पूरी तरह वैकल्पिक है। इसमें यह भी कहा गया है कि कंपनियां पैकेज पर किसी भी उपयुक्त स्थान पर मोहर या स्टिकर लगाकर या ऑनलाइन प्रिंट करके ऐसी पैकेजिंग पर एमआरपी सही कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार केंद्र के पूर्ण सहयोग से एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 11 वर्षों में बिहार को विकास परियोजनाओं और कार्यों के लिए 14,85,000 करोड़ रूपये से अधिक की सहायता दी है। बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में बिहार को केवल 2,80,000 करोड़ रूपये मिले थे। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार यात्रा का उद्देश्य वोट बैंक की राजनीति है।
यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था, यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था, यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था, यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नए नियम अगले महीने की 1 तारीख से लागू हो गए। श्री वैष्णव ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लोगो और प्रमुख गतिविधियों का शुभारंभ करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने बैंकों से भी परामर्श किया है। देशभर के 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अब भारत के स्थलों की संख्या 62 से बढ़कर 69 हो गई है। नए शामिल स्थलों में महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप, कर्नाटक के सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत, मेघालय की गुफाएं, नागा हिल ओफियोलाइट, आंध्र प्रदेश का एर्रामट्टी डिब्बालू, तिरुमाला पहाड़ियां और केरल की वर्कला चट्टाने शामिल हैं। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने मॉनसून अंतराल के बाद चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से आरंभ करने की मंजूरी दे दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर उड़ान को अधिक सुरक्षित बनाने के पहलुओं की गहन जांच के बाद इसे लागू किया गया है। भारत और श्रीलंका के नीति निर्माता, राजनयिक और विशेषज्ञ कल कोलंबो में साझा विकास के लिए आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी सुदृढ़ करने पर नीति संवाद के लिए एकत्रित हुए। कार्यक्रम का आयोजन कल पाथफाइंडर फाउंडेशन और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन ने किया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत अपना ग्रुप ए का अंतिम मुकाबला ओमान के साथ खेलेगा। अबूधाबी में ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से होगा। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज पीवी सिंधु का सामना कोरिया के अन सू युंग से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:10 से खेला जाएगा। वहीं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा रेन जियांग यू और शी हाउनाउन की चीनी जोड़ी के बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल रात 9:10 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।